तो अभी ना मैं शुरू करने जा रहा हूँ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इन्फेक्शंस। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है उसमें इन्फेक्शंस में हमारे पास आ जाता है इन्फेक्शंस ऑफ हार्ट। अब इसमें तीन लेयर हैं हार्ट की, हार्ट वॉल की। जैसे एंडोकार्डियम आ जाएगी हमारे पास। एंडोकार्डियम जो है वो क्या करती है, जितनी भी हमारे पास हार्ट की कैविटीज़ हैं, ठीक है, जितने वेंट्रिकल्स एट्रियम हैं, सबको लाइन करती है। ठीक है, अब अगर एंडोकार्डियम में इन्फेक्शन हो जाए तो हम उसको बोलते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है मायोकार्डियम। ये मिडल लेयर है, इसमें क्या है, कार्डिक मसल है। अब कार्डिक मसल कैसी होती है, इनवॉलंट्री स्ट्राइटेड मसल होती है। ठीक है, स्ट्राइटेड मसल्स जो होती हैं वॉलंट्री अगर हों तो वो हमारे पास स्केलेटल मसल्स आ जाती हैं, और इनवॉलंट्री मसल्स अगर स्मूथ हों तो हमारे पास स्मूथ मसल्स आ जाती हैं, और अगर हमारे पास इनवॉलंट्री मसल्स स्ट्राइटेड हों तो वो हमारे पास मायोकार्डियम में कार्डिक मसल आ जाती है। ठीक है, अब ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट करती है। ठीक है, अब अगर मायोकार्डियम में इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी ढंग से अगर मायोकार्डाइटिस हो जाए तो, क्योंकि लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है इन्फ्लामेशन में। ठीक है, मायोकार्डाइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ मायोकार्डियम। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट है। ठीक है, ये किससे बनी है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी है और फैट से बनी है। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू जो है वो लुब्रिकेटिंग फ्लूड जो है उसको सिक्रीट करता रहता है पेरिकार्डियल कैविटी में। ठीक है, अब पेरिकार्डियम की अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। ठीक है, अब पेरिकार्डियल कैविटी में कई बार ऐसा होता है कि फ्लूड इकट्ठा हो जाता है, उसको हम पेरिकार्डियल इफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन्फेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स में। ठीक है, और ब्लड वेसल्स में क्या होता है, या तो माइकोटिक एन्यूरिज्म हो जाएगा या इन्फेक्टिव एंडार्टाइटिस हो जाएगा। ठीक है, अब डिवाइस रिलेटेड इन्फेक्शंस की अगर हम बात करें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, तो उसमें हमारे पास आ जाता है CRBSI, जिसकी फुल फॉर्म है कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, या फिर सुपुरेटिव थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ठीक है, अब ऑटो इम्यून मीडिएटेड हमारे पास आ जाता है एक्यूट रूमेटिक फीवर। अब यहाँ तक तो हो गया, अब इसके बाद हम ना इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की बात करेंगे। अब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का मतलब क्या है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का मतलब है जो हमारे पास हार्ट वेल्स हैं, या फिर जो हमारे पास म्यूरल एंडोकार्डियम है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी एक बहुत ही करेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें बल्की फ्राइबल वेजिटेशंस बन जाती हैं। ये वर्ड्स याद रखने हैं, बल्की फ्राइबल वेजिटेशंस बन जाती हैं। अभी ये वेजिटेशंस जो हैं वो किस चीज़ की बनी है, ठीक है, अब ये बनी है प्लेटलेट्स की, फाइब्रिन की, माइक्रो कॉलोनी ऑफ ऑर्गेनिज़म्स की। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेगुलर स्टफ आ जाएगा, प्लेटलेट, फाइब्रिन, माइक्रो कॉलोनीज ऑफ ऑर्गेनिज़म, और कुछ इन्फ्लामेटरी सेल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब वेजिटेशंस जो है वो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होती है हार्ट वेल्स पे। ठीक है, हार्ट वेल्स पे प्रेजेंट होती हैं क्योंकि वहाँ पे क्या है कि ज़्यादा काम हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगी, इंजरी जल्दी होगी, जहाँ पे इंजरी होगी वहाँ पे क्या होगा कि बैक्टीरिया जो है वो इंजर्ड स्पॉट पे आके मल्टीप्लाई करेगा, तो समझ लेना ये। फिर उसके बाद, या फिर ये एक्ट करता है लो प्रेशर साइड ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट पे, ठीक है, और म्यूरल एंडोकार्डियम पे। फिर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एक्यूट और सब एक्यूट फॉर्म में। ठीक है, अब एक्यूट क्या है, वो बहुत जल्दी हो जाता है और जल्दी प्रोग्रेस कर जाता है, एकदम ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस कर जाता है। ठीक है, सब एक्यूट जो है वो धीरे प्रोग्रेस करता है और धीरे ही, मतलब देर लगती है उसको, क्रोनिकसिटी है थोड़ी सी उसमें। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्यूट एंडोकार्डाइटिस की। ठीक है, अब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है कि जो एवोल्यूशन है दैट इज़ रैपिड, और एक्यूट एंडोकार्डाइटिस जो है इट इन्वॉल्व्स नॉर्मल कार्डियक वेल्व। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हाई विरुलेंस का ऑर्गेनिज्म चाहिए, जैसे स्टेफाइलोकोकस ओरियस। अब इसमें क्या है, सब्सटेंशियल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी हो जाती है इवन विद अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक थेरेपी और सर्जरी। ये बहुत कम होता है, मतलब 10 से 20% केसेस होते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के एक्यूट। ठीक है, अब एक्यूट जो है वो बहुत जल्दी कार्डियक स्ट्रक्चर्स को डैमेज करता है और एक्स्ट्रा कार्डियक साइट्स पर चला जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी बताया इसमें सॉरियस होता है या फिर कोई भी हाई विरुलेंस वाला ऑर्गेनिज्म होगा, प्रीवियसली नॉर्मल वेल्व पे एक्ट करेगा, सब्सटेंशियल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी करेगा इवन विद अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक थेरेपी एंड और सर्जरी। अब हम बात करते हैं सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस की।
सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस का क्या है कि इट अकर्स इन अ प्रीवियसली डैमेज्ड हार्ट, मतलब जो हमारे पास स्कार्ड या फिर डिफॉर्म्ड वॉल्स है ना उसमें होगा। फिर ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर ऑफ लो विरलेंस, जैसे कि विरिडन, स्ट्रेप्टोकोका है, और बहुत ही इंसीडियस ऑनसेट है इसका, मतलब ग्रेजुअल सा ऑनसेट है और ये स्लोली मेटास्टाइज करता है, अनलाइक एक्यूट एंडोकार्डाइटिस जो कि बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाता है एक्स्ट्रा कार्डिक साइट पे। और ये वीक से मंथ तक प्रोग्रेस करेगा ग्रेजुअली, फिर मोस्ट पेशेंट जो रिकवर कर जाते हैं आफ्टर अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक थेरेपी। हमने क्या क्या पढ़ा अभी, इसका एवोल्यूशन स्लो है, ये क्या करता है प्रीवियसली डैमेज्ड हार्ट पे काम करता है जहाँ पे मतलब स्कार्ड या फिर डिफॉर्म्ड वैल्व हो, और इम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म जो है वो लो विरुलेंस का होगा जैसे विरिडन, स्ट्रेप्टोकोका है, और ये इसका ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव कोर्स होता है जो वीक से मंथ तक जाता है। बहुत सारे पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाते हैं आफ्टर एंटीबायोटिक थेरेपी। मोस्ट कॉमन टाइप जो है वो 50 to 60% केसेस होते हैं इसके, दूसरे के 10 to 20% है ना, इसके 50 to 60% होते हैं सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस के। अब पैथोजेनेसिस की बात करते हैं, पैथोजेनेसिस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इट इन्वॉल्व सम सिक्वेंशियल स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप क्या आ जाएगा, हमारे पास अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, इट इज़ प्री डिस्पोज बाई वेरियस रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि कार्डिक डिफेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। अब बहुत सारी कार्डिक कंडीशन हैं जो कि इससे एसोसिएटेड हैं, जैसे हमारे पास आ जाएगा कंजेनिटल वैल्वुलर डिजीज आ जाएगी, जैसे मिट्रल रिगर्जिटेशन हो रही हो किसी को, एओर्टिक स्टेनोसिस हो, एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स हो, तो उस केस में चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर हम मतलब हमारे पास पेशेंट हो जिसमें कि इंट्रावेनस कैथेटर यूज़ हुआ हो या फिर प्रोस्थेटिक वॉल रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई हो, तो इस केसेस में क्या होता है कि एंडोकार्डाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब ये तो आ गया हमारे पास रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा एंडोथीलियल इंजरी, ठीक है। अब एंडोथीलियम अनलेस डैमेज्ड इज रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन बाय मोस्ट बैक्टीरिया एंड टू थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास क्या है, प्लेन है, प्लेन सी एंडोथीलियम है, कोई इंजरी नहीं हुई है, कोई स्कार नहीं है, तो उस केस में देर आर लाइक वर्चुअली जीरो चांसेस ऑफ डेवलपिंग एनी इन्फेक्शन, ठीक है, और ना ही वहाँ पर थ्रोम्बस बनेगा। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो है इट कैन डेवलप ऑन प्रीवियसली नॉर्मल वेल्स, बट इट इज़ मोर कॉमन टू डेवलप ऑन अ डिफेक्टिव वेल्व, ठीक है। दिस इज बिकॉज प्री डिस्पोजिंग कार्डिक एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से क्या होगा कि जितनी मेरे पास कार्डिक एबनॉर्मेलिटीज थी, ठीक है, वीनस कैथेटर हो गया था, फिर प्रोस्थेटिक वॉल रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गई थी, मिट्रल रिगर्जिटेशन हो गई थी, एओर्टिक स्टेनोसिस हो गया था, ठीक है, फिर इस सब से क्या होता है कि टर्बुलेंस पैदा होती है ब्लड फ्लो में, ब्लड फ्लो टू हार्ट से, ठीक है। अब जब हार्ट में ब्लड फ्लो में टर्बुलेंस होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से इंजरी होगी, ठीक है, इंजरी होगी कार्डिक एंडोथीलियम की, ठीक है, कार्डिक एंडोथीलियम की इंजरी होगी, एओर्टिक स्टेनोसिस हो गया, मिट्रल रिगर्जिटेशन हो गया, टर्बुलेंस है, टर्बुलेंस किस चीज़ के लिए है, जो मतलब ब्लड पहुंच रहा है एंडोथीलियम तक, अब एंडोथीलियम में क्या होगी, इंजरी होगी। अब यूज़ ऑफ आईवी कैथेटर, अब कैथेटर का जब हम यूज़ करते हैं वो तो डायरेक्ट ट्रोमा ही कर देगा कार्डिक एंडोथीलियम को, फिर उसकी वजह से क्या होगा कि एंडोथीलियल सरफेस पे ना प्लेटलेट और फाइब्रिन जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, प्लेटलेट और क्योंकि वहाँ पे क्या है एंडोथीलियम में डैमेज हुआ है, अब डैमेज के बाद उसको रिपेयर करने के लिए प्लेटलेट और फाइब्रिन वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि इस कंडीशन में ऐसा है कि वहाँ पे सबसे प्लेटलेट और फाइब्रिन है, बैक्टीरिया नहीं है ना, तो इसको हम बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस, NBTE। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देख ली हैं, दो फुल फॉर्म्स देखी हैं हमने, सबसे पहले हमने देखी है कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, CRBSI, कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी है, NBTE, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। अब कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं, ये जो थ्रोम्बस है, ठीक है, इट सर्व्स एज अ साइट ऑफ बैक्टीरियल अटैचमेंट ड्यूरिंग ट्रांजिएंट बैक्टीरियमिया. ठीक है, अब ट्रांजिएंट बैक्टीरियमिया है, किसी ने ब्रश किया है, खाना खाया है, ठीक है, या फिर डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट पे गए हैं, तो क्या होगा कि जो बैक्टीरिया ऑरल कैविटी में प्रेजेंट है वो धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा. ठीक है, ट्रांजिएंटली इट इज़ प्रेजेंट इन ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, या फिर कहीं पे एब्सेस है वहाँ से भी बैक्टीरिया का निकलता है. मतलब बैक्टीरिया आकर कॉन्टैक्ट में आता है इस नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस में के कॉन्टैक्ट में. ठीक है, तो क्या होगा कि इट विल स्टिक टू एंड कॉलोनाइज द डैमेज कार्डिक एंडोथीलियल सरफेस. ठीक है, अब जब ये वहाँ पे डैमेज करेगा एंडोथीलियल सरफेस को, अब वहाँ पे क्या थ्रोम्बस था, फाइब्रिन था, अब वहाँ पे बैक्टीरिया भी आ गया. ठीक है, अब वहाँ पे कॉलोनाइजेशन कर ली बैक्टीरिया ने. ठीक है, कॉलोनाइजेशन कर ली, फिर टॉक्सिन्स निकालेगा, मतलब एवरीथिंग अ बैक्टीरिया यूजेस फॉर पैथोजेनेसिस, इट जस्ट स्टार्ट यूजिंग इट. फिर वहाँ पे वेजिटेशन बनेगी. ठीक है, अब कॉलोनाइजेशन हो चुकी है तो एंडोथीलियल सरफेस जितना भी था वहाँ पे, इट रैपिडली गेट्स कवर्ड विथ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ फिब्रिन एंड प्लेटलेट्स. तो वहाँ पे क्या करेंगे ना, फिब्रिन और प्लेटलेट्स आ जाएंगे. ठीक है, अभी जो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट है इसकी वजह से क्या होगा, फर्दर बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन होगी. ठीक है, बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन होगी तो क्या होगा, वहाँ पे ऊपर से भी कवर हो गया है फाइब्रिन और कॉलेजन से. ठीक है, फाइब्रिन और प्लेटलेट से सॉरी, और अंदर क्या है, प्लेटलेट है, फाइब्रिन है, इन्फ्लेमेटरी सेल है और इंट्रैप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, तो वेजिटेशन बन जाएगी. अब क्या होगा कि वेजिटेशन जो है दे विल अल्टीमेटली सीड बैक्टीरिया इनटू ब्लड. वेजिटेशन से धीरे धीरे ब्लड ब्लड में निकलते जाएगा बैक्टीरिया, स्लो बट कॉन्स्टेंट रेट. ये बात आपको याद रखनी है, द रिजल्टिंग वेजिटेशन अल्टीमेटली सीड बैक्टीरिया इनटू द ब्लड एट अ स्लो बट कॉन्स्टेंट रेट विच कैन मेटास्टाइज टू डिस्टेंट साइट्स. ठीक है, इतनी बात समझ गए. अब डिस्टेंट साइट्स में मान लो कि एम्बुलस बन गया, या फिर जान सकते हो ना हम डिस्टेंट साइट्स पे क्या क्या जाएगा, सीड कर रहा है बैक्टीरिया जो है वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच रहा है धीरे 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 धीरे. एटियोलॉजिकल एजेंट्स ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. अब ये क्या है, अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे. ठीक है, मान लीजिए कि नेटिव वॉल्व है, प्रोस्थेटिक वॉल्व है, एक्यूट एंडोकार्डाइटिस है, सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस है, इन सब के लिए जो इटियोलॉजिकल एजेंट्स है दे आर डिफरेंट. ठीक है, और मान लो कोई आई वी ड्रग एक भी यूजर है तो उसमें इटियोलॉजिकल एजेंट अलग होगा. ठीक है, नाउ द ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर प्राइमरी पोर्टल थ्रू विच दे एंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड रीच फॉर द हार्ट. ठीक है, अब जैसे प्राइमरी पोर्टल की बात की जाए तो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस जो है, विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई है. ठीक है, वो क्या है, ओरल कैविटी में प्रेजेंट है. अब आपने ब्रश किया, ब्लड निकला, तो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस जो है वो उसके थ्रू चला जाएगा और वहाँ पे हार्ट में जाके जहाँ पे कॉलेजन वगैरह जुड़ा हुआ है वहाँ पे जाके वेजिटेशन बना देगा. ठीक है, फिर स्किन स्टेफाइलोकोकाई है, कोई आई वी ड्रग एब्यूज़र है, उसने क्या किया, स्किन मतलब जब वो बार बार यूज़ कर रहा है तो क्या होगा कि ब्लड में कॉन्टैक्ट हो जाएगा स्टेफाइलोकोकाई का, स्टेफाइलोकोकाई विल रीच. देन वी गॉट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वहाँ पे हेसेक ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, और हेसेक ऑर्गेनिजम्स में आ जाएंगे हमारे पास हीमोफिला स्पीशीज, एग्रीगेटिव बैक्टेरिया स्पीशीज, कार्डियोबैक्टीरियम होमिनेस, इकेनेला कोरिडेंस, किंगेला किंगे. ठीक है, अब हम बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगी, इसमें कार्डिक और नॉन कार्डिक मैनिफेस्टेशंस होंगी. कार्डिक मैनिफेस्टेशंस क्या होंगी, इसमें क्या होगा कि एक न्यू या फिर वर्सेंट रिगर्जिटेंट मर्मर बनेगी. ठीक है, और अगर नॉर्मल वैल्व हो किसी के पास तो अगर वहाँ पे मर्मर दिखे, नॉर्मल वैल्व में मर्मर दिखे, रिगर्जिटेंट मर्मर दिखे, पहले कम थी मर्मर अब ज़्यादा हो गई है, या फिर किसी केस में नई मर्मर पैदा हुई है, तो दैट कैन बी ए कार्डिक मैनिफेस्टेशन. ठीक है, नॉन कार्डिक मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे, फीवर हो जाएगा. फीवर क्यों होगा, हमारे पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो है वो क्या निकालेगा, बैक्टीरिया इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, तो ये सब क्या करेंगे, ये पायरोजेंस निकालेंगे, ठीक है, पायरोजेंस जो है वो इंटरल्यूकिन 1 ये सब जो है वो आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, इस सब की वजह से PGE2 रिलीज होगा, PGE2 जो है वो थर्मो रेगुलेशन रेगुलेटरी सेंटर पे एक्ट करेगा हाइपोथैलेमस में, और फीवर हो जाएगा, चिल्स, चिल्स भी टेम्परेचर का जो सेट पॉइंट है वो चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से चिल्स आएंगी, फिर स्वेट्स होंगे, एनोरेक्सिया हो जाएगा बंदे को, ठीक है, फूड हैबिट, मतलब खाना खाने का मन नहीं करेगा, वेट लॉस हो जाएगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा, तो ये सब साइटोकाइंस की वजह से हो रहा है, ठीक है, माइल्जिया हो जाएगा, माइल्जिया क्यों होगा, जो नर्व क्या नाम है, नर्व एंडिंग्स हैं हमारे पास मसल्स में वो सेंसिटाइज हो जाएंगी, आर्थ्रेलजिया हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि जो बोन्स के आसपास जो नर्व एंडिंग्स हैं वो सेंसिटाइज हो जाएंगी, आर्टीरियल एम्बोलाई बनेंगे, ठीक है, अब वो क्या है, कोलेजन बैक्टीरिया और ये सब है, तो वो वहाँ से जब ब्रेक करेगा ना वेजिटेशन, इट विल फॉर्म एन एम्बोलाई, ठीक है, अब क्या नाम है, स्प्लीनोमेगैली हो सकती है, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया में हो रहा है ना बार बार, तो स्प्लीन का वर्क बढ़ गया, ठीक है, स्प्लीन क्लियर्स ऑल ऑफ दिस स्टफ ना, क्लबिंग हो जाएगी, ठीक है, पेटिक्यू हो जाएगा, ठीक है, और न्यूरोलॉजिकल और पेरिफेरल मैनिफेस्टेशंस आ सकती हैं, जैसे ओसलर्स नोड हो जाएंगी, ये बात याद रखना, ओसलर्स नोड बन सकती हैं, सबंगल हेमरेजेस हो सकती हैं, चेन वे लिजन्स हो सकते हैं, तो याद ही रखना है, ओसलर्स नोड्स, सबंगल हेमरेज एंड चेन वे लिजन्स, ठीक है, अब लेबोरेटरी मैनिफेस्टेशंस की होंगी, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा, अब माइक्रोस्कोपिक हीमेटूरिया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि किडनी में जा रही हैं और फिर किडनी में भी बैक्टीरिया या फिर पहुंच रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन्स हैं वहाँ पे क्या करेंगे, डिस्ट्रक्शन करेंगे, जब वहाँ पे डिस्ट्रक्शन करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, माइक्रो लॉजिकल हीमेटोरिया हो जाएगा, ठीक है, ESR बढ़ जाएगा, फिर सी रिएक्टिव प्रोटीन मिलेगा या फिर रूमेटॉइड फैक्टर मिल जाएगा, अब हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का, ठीक है, तो उसके लिए हम हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक स्कीम यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया, ठीक है, अब मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया जो है वो किस किस चीज़ों पे बेस्ड होगा, ठीक है, हम डायग्नोसिस कर रहे हैं किसी चीज़ का, सो हम डायग्नोसिस करते हैं, उसके लिए पेशेंट आता है तो क्या होता है कि इट कम्स फॉर अ कंप्लेंट, दैट कंप्लेंट इज वर्चुअली द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, राइट, तो ड्यूक्स क्राइटेरिया में सबसे पहली चीज़ क्या आ जाएगी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फिर हम उसके बाद अगर देखें तो हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए बोलते हैं, ठीक है, तो लेबोरेटरी फाइंडिंग्स आ जाएंगी हमारे पास दूसरी चीज़, और तीसरी चीज़ जो है वो अब हम हार्ट पेशेंट है तो उसमें इको करवाएंगे, तो इकोकार्डियोग्राफिक फाइंडिंग्स आ जाएंगी, ठीक है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स एंड इकोकार्डियोग्राफिक फाइंडिंग्स के ऊपर बेस्ड है ड्यूक्स क्राइटेरिया, जिससे हम तय करते हैं कि किसी व्यक्ति को एंडोकार्डाइटिस है या नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे हम, अब देखेंगे कि क्राइटेरियाज क्या क्या हैं, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है ब्लड कल्चर, ठीक है, अब ब्लड कल्चर में क्या है कि अगर आपको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मिल जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाता है इसका इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का ब्लड में, तो जो है वो एक मेजर क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा, अगर एक टिपिकल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ऑर्गेनिज्म निकल जाता है दो सेपरेट ब्लड कल्चर से, या फिर कोई ऐसा एजेंट मिल जाता है अदर देन टिपिकल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ऑर्गेनिज्म जो कि परसिस्टेंटली ब्लड कल्चर से मिल रहा है, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा कार्डियक फोकस ऑफ इन्फेक्शन, मतलब आपने क्या ये पूरी बॉडी में देख लिया है, कहीं पे भी आपको कोई एब्सेंस नहीं मिला है, कोई भी ऐसा सोर्स नहीं मिला है जहाँ से ये निकल सकता है, डिसेमिनेट हो सकता है, सीडिंग निकल सकती हैं बैक्टीरिया की, ठीक है, और एक नॉन टिपिकल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एजेंट जो है वो मिल रहा है ब्लड से, ठीक है, आपने हर जगह देख लिया, कहीं पे भी आपको इन्फेक्शन नहीं मिली, या फिर आपके आपको एक टिपिकल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का एजेंट मिल जाता है ब्लड में, ब्लड कल्चर में या लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में चलना है, ठीक है, मिल जाता है ब्लड कल्चर में, तो क्या होगा कि एक मेजर क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा. नाउ सबसे पहले यार क्राइटेरियाज की बात कर लेते हैं, ये सब बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है. तो मॉडिफाइड डूक्स क्राइटेरिया जो फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बोलता है कि देर आर टू मेजर क्राइटेरिया. सबसे पहला मेजर क्राइटेरिया है पॉजिटिव ब्लड कल्चर, ठीक है. अब पॉजिटिव ब्लड कल्चर में क्या आएगा, टिपिकल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ऑर्गेनिज्म मिल गया आपको दो सेपरेट ब्लड कल्चर्स में, ठीक है, जैसे कि विरिडन स्ट्रेप्टोकोकाए, स्ट्रेप्टोकोकस कैलोलिटिकस, एसेक ऑर्गेनिजम्स, स्टफाइलोकोकस ऑरियस या फिर एंटेरोकोकाए, ठीक है, ये टिपिकल है. क्या कहते हैं टिपिकल, एक बार फिर बोलना, विरिडन स्ट्रेप्टोकोकाए, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस गैलोलिटिकस, ठीक है, हेसेक ऑर्गेनिजम्स, स्टेफाइलोकोकस ओरियस और एंटेरोकोकाई, या फिर देर इज अ प्रेजेंस ऑफ परसिस्टेंटली पॉजिटिव ब्लड कल्चर विद एजेंट्स अदर देन टिपिकल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. अब यहाँ पे पहले तो हमें क्या था कि दो सेट्स 12 घंटे अपार्ट, सॉरी दो सेपरेट ब्लड कल्चर जो हमने पहले किए थे ना वो 12 घंटे अपार्ट थे, ठीक है. अब उसमें अगर आपको कोई भी टिपिकल मिल जाता है देन एक मेजर क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है, और दूसरा है परसिस्टेंटली पॉजिटिव ब्लड कल्चर विद एजेंट्स अदर देन टिपिकल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. तो हमारे पास जो ये हैं स्ट्रेप गैलोलिटिकस, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, फिर क्या नाम है हमारे पास, हेसेक, स्टाफ ओरियस और एंटेरोकोकाई, इन सब के अलावा अगर कोई और मिलता है आपको परसिस्टेंटली मिल रहा है ब्लड कल्चर में, ठीक है, तो भी हम बोलेंगे कि एक मेजर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि ब्लड कल्चर सेट्स जो हैं वो 12 घंटे अपार्ट होते हैं, या फिर तीन सेट होते हैं जो कि हम चार सेपरेट ब्लड कल्चर करते हैं, और जब फर्स्ट और लास्ट होता है दैट इज एटलीस्ट 1 आवर अपार्ट, ठीक है. फिर उसके बाद आता है हमारे पास, अच्छा ठीक है, अब अगर इसमें हमें मिल गया बैक्टीरिया प्रेजेंट तो हम बोल देंगे कि ये एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, या फिर आपके पास एक भी सिंगल ब्लड कल्चर आ जाता है फॉर कोक्सियला बर्नेटी, ठीक है, इट इज़ अ रेयर कोज, सिंगल पॉजिटिव ब्लड कल्चर फॉर कोक्सियला बर्नेटी, या फिर फेज 1 IgG टाइटर मिलता है आपको, ठीक है, फेज 1 IgG टाइटर IgG एंटीबॉडी टाइटर मिलता है 1:800 से ज़्यादा का, ठीक है, तो फिर आप बोलेंगे कि एक मेजर क्राइटेरिया फुलफिल हो गया ब्लड कल्चर वाला. दूसरा क्राइटेरिया है एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट का, ठीक है, तो उसमें क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव एकोकार्डियोग्राम, ठीक है. अब आपने एको किया तो एको में आपको क्या मिला कि ऑसिलेटिंग इंट्राकार्डिक मासेस दिखे वेल्व पे, या आपको एब्सेस दिखी एको पे, या आपको जो प्रोस्थेटिक वेल्व है उस पर न्यू पार्शियल डेहिसेंस दिखी, मतलब वो थोड़ा सा जो है वो उखड़ गया है जो आपको प्रोस्थेटिक वेल्व है, तो आप क्या बोलोगे कि ये एक पॉजिटिव एकोकार्डियोग्राम फाइंडिंग है, ठीक है. या फिर आपके पास क्या है, न्यू वेल्वुलर रिगर्जिटेशन पैदा हुई है, नई रिगर्जिटेशन आपको मिली है, ठीक है, तो इस केस में आप क्या बोलोगे कि आपके पास जो कार्डिक मैनिफेस्ट एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट की जो क्राइटेरिया है दैट हैज बीन फुलफिल्ड. सबसे पहला क्राइटेरिया था ब्लड कल्चर, दूसरा था हमारे पास एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट का, तो मेजर क्राइटेरियाज हमने कर लिए हैं स्टडी. अब हम बात करेंगे माइनर क्राइटेरिया की, तो देर आर 5 माइनर क्राइटेरिया, ठीक है, 5 माइनर क्राइटेरिया है हमारे पास. सबसे पहला माइनर क्राइटेरिया प्रीडिस्पोजिशन, ठीक है, जिसके हमने जिसको हम बोल सकते हैं रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, कि जैसे ही प्री डिस्पोजिशन होती है ना। अब प्री डिस्पोजिशन में क्या होगा, प्री डिस्पोजिंग हार्ट कंडीशंस, मान लो किसी को क्या नाम है वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट है, या फिर कोई माइट्रल रिगर्जिटेशन है, या फिर वो क्या करता है कि IV ड्रग यूज़ करता है, तो दैट वुड बी अ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। सेकेंड क्राइटेरिया है माइनर फीवर, ठीक है। फीवर क्यों होगा, फीवर इज़ अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ना, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी तो लेनी है हमने। तो फीवर जो कि 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर फीवर, फिर हम तीसरी चीज़ करेंगे, तीसरा माइनर क्राइटेरिया है वैस्कुलर फिनोमेना, ठीक है। वैस्कुलर फिनोमेना में हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजर आर्टीरियल एम्बोलाई, ठीक है, कोई भी हमारे पास मेजर आर्टरी है वहाँ पे एम्बोलस फंसा हुआ है, या फिर सेप्टिक पल्मोनरी इन्फार्क्ट, ठीक है, तो पल्मोनरी इन्फार्क्ट हो गए, आर्टीरियल एम्बोलाई हो गए, माइकोटिक एन्यूरिज्म हो गया, या फिर इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो गई, कंजक्टाइवल हेमरेज हो गई, या फिर जेन वेलिजन हो गए, ये सब क्या आ जाएंगे हमारे पास वैस्कुलर फिनोमेना। चौथी चीज़ आती है हमारे पास इम्यूनोलॉजिक फिनोमेना, जैसे मान लो कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, ठीक है, ओसलर्स नोड्स हो गई, रोथ स्पॉट मिला, या फिर रोमेटॉइड फैक्टर मिल रहा है, दैट वुड बी इम्यूनोलॉजिक फिनोमेना। फिर उसके बाद आते हैं माइक्रोबायोलॉजिक एविडेंस पे, ठीक है, पॉजिटिव ब्लड कल्चर मिल रहा है आपको, ठीक है, पर कोई मेजर क्राइटेरिया नहीं हो रहा है, ठीक है, जैसे कि मेजर क्राइटेरिया थे कि आपको परसिस्टेंटली मिलता है ब्लड में कोई बैक्टीरिया जो कि नॉन टिपिकल फॉर एंडोकार्डाइटिस, या फिर आपको टिपिकल मिल जाता है दो बार, ठीक है, या फिर आपको कोक्सिला बर्नेटी मिल जाता है, ठीक है, मगर वो तीनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है, पॉजिटिव ब्लड कल्चर मिल रहा है पर कोई मेजर क्राइटेरिया नहीं हो रहा है, ठीक है, सीरोलॉजिक एविडेंस मिल रहा है किसी भी एक्टिव इन्फेक्शन का, ठीक है, या फिर आपको कोई सीरोलॉजिक एविडेंस मिल जाता है एक्टिव इन्फेक्शन का, पहले तो बैक्टीरिया मिल जा रहा था मेजर क्राइटेरिया, अब आपको सीरोलॉजिक एविडेंस मिल रहा है मतलब उसके खिलाफ एंटीबॉडीज या उसका कोई एंटीजन वगैरह, ठीक है, या फिर आपने RT-PCR किया तो उसमें आ गया। अब डेफिनेट एंडोकार्डाइटिस कब होगा, ठीक है, डेफिनेट एंडोकार्डाइटिस तब होगा जब या तो दो मेजर क्राइटेरिया पॉजिटिव ब्लड कल्चर और एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट हो गई, ठीक है, या फिर एक मेजर क्राइटेरिया मिला आपको, मान लो आपको कि ब्लड कल्चर मिल जाता है स्टाफ फॉर इसके लिए, और तीन माइनर क्राइटेरिया हो गए, फीवर आ गया बंदे को, ठीक है, इम्यूनोलॉजिक मिल गए आपको जैसे कि ओसलर्स नोड मिल गया, ठीक है, रोथ स्पॉट मिल गया, या फिर रूमेटॉइड फैक्टर मिल गया, और क्या नाम है, एक हो गया आपके पास वैस्कुलर फिनोमिना, चेन वेलिजन हो गया, या फिर पांच माइनर क्राइटेरिया सारे के सारे पूरे हो गए, प्रीडिस्पोजिंग हार्ट कंडीशन भी है, फिर फीवर भी है, फिर वैस्कुलर फिनोमिना हो गया, इम्यूनोलॉजिक फिनोमिना हो गया, और माइक्रो बायोलॉजिक एविडेंस मिल गया, मतलब कि ब्लड कल्चर जो है वो पॉजिटिव हुआ है लेकिन बैक्टीरिया नहीं मिला स्टाफोरिस वगैरह का, या फिर मतलब ऐसा हुआ है कि एक्टिव इन्फेक्शन का पता चल गया आपको, बस कोई ऑर्गेनिज्म नहीं मिला। ठीक है, तो अब हमने क्या कर लिया, डायग्नोज कर लिया है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को, ठीक है, अब ना एजेंट्स की बात करते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। सबसे पहला एजेंट है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है, दूसरा एजेंट है हमारे पास कोगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई जैसे कि स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, ठीक है, तीसरा आता है आपके पास स्ट्रेप्टोकोकाई विरिडेंस और अदर्स, ठीक है, फिर आता है एंटेरोकोकाई न्यूमोकोकाई फेस्टिडियस क्राम नेगेटिव कोकोपेसिलाई जैसे कि हेसा ग्रुप आ गया पूरा ही, फिर एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली का कोई भी, सूडोमोनास जो है वो ड्रग यूजर्स में मिल जाता है, कैंडिडा स्पीशीज मिल गई आपको, डिप्थीरियोइड्स मिल गए, डिप्थीरियोइड्स पैलिसेड अरेंजमेंट याद है ना। सर मोस्ट कॉमन एजेंट इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंडोकार्डाइटिस,
ठीक है। अब जैसे नेटिव वॉल वेंट्रोकार्डाइटिस होगा तो किसकी वजह से होगा? वो स्टाफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से होगा मोस्ट कॉमनली, ठीक है, नेटिव वॉल पर। कम्युनिटी अक्वायर्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा हमारे पास विरिडन स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। हेल्थ केयर एसोसिएटेड की बात करें तो वो क्या होगा हमारे पास? सबसे ज़्यादा स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा नेटिव वॉल्व में होगा स्टाफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। अब हम प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस की बात करते हैं, ठीक है। मान लो कि आपने किसी बंदा है, कोई बंदा है, उसमें क्या क्या कार्डिक वॉल्व की रिप्लेसमेंट हुई है, ठीक है। तो अब अर्ली यानी कि प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस हो रहा है विद इन 12 मंथ ऑफ वॉल्व रिप्लेसमेंट, तो ये जनरली नॉस्कॉमियल होता है, ठीक है। मान लो कि क्या हुआ कि इंट्रा ऑपरेटिव कंटेमिनेशन हो गई है प्रोस्थेसिस की, ठीक है, या फिर बैक्टीरिया में एक पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है। अब इसमें क्या होता है कि कोएगुलेज नेगेटिव स्टाफाइलोकोकाई का ज़्यादा चांस होता है, जैसे कि स्टाफाइलोकोकस एपिडर्मिस, और कोएगुलेज पॉजिटिव में भी हो जाता है, जैसे कि स्टाफाइलोकोकस ओरियस। ये मोस्ट कॉमन एजेंट्स हैं अर्ली प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस के लिए। फिर लेट प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस की अगर हम बात करें, यानी कि 12 महीने के बाद, ठीक है, वेल्व रिप्लेसमेंट के 12 महीने के बाद हो, तो उसमें कम्युनिटी एक्वायर्ड जैसे कि विरिडन स्ट्रेप्टोकोकाई मोस्ट कॉमन एजेंट होता है, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम बात करें, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द टाइम ऑफ ऑनसेट आफ्टर सर्जरी, कोएगुलेज नेगेटिव स्टाफाइलोकोकाई मोस्ट कॉमन एजेंट है, ठीक है, इनके स्टाफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, ठीक है। 68-85% केसेस उसी के होते हैं, और जो मेजोरिटी केसेस होते हैं वो मेथिसिलिन रेजिस्टेंस कोएगुलेज नेगेटिव स्टाफाइलोकोकाई के होते हैं। सो बच के रहना ही पड़ेगा लोगों को इससे। अब अगर हम बात करें एंडोकार्डाइटिस इन आईवी ड्रग अब्यूजर्स, ठीक है, हमने नेटिव वॉल्व की बात कर ली, स्टाफ ओरियस था, ठीक है, विरिडन स्ट्रेप्टोकोकाई कम्युनिटी अक्वायर्ड था, और हेल्थ केयर एसोसिएटेड एस ओरियस था, ओवरऑल एस ओरियस था। प्रोस्थेटिक वॉल्व में हमने बात की, हर्ली में हमारे पास क्या था, विरिडन्स सॉरी कौन सा था, कोएगुलेज नेगेटिव स्टाफाइलोकोकाई और स्टाफाइलोकोकस ओरियस था। फिर लेट में हमारे पास क्या था, कम्युनिटी अक्वायर्ड यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस विरिडन्स था। अगर ओवरऑल में देखा गया था तो हमारे पास क्या था कि 68-85% केसेस जो थे दोज वर ऑफ कोएगुलेज नेगेटिव स्टाफाइलोकोकाई। अब अगर हम बात करें आई वी ड्रग यूजर में, ठीक है, तो यंग मेल्स जो हैं दे आर मोस्ट कॉमन विक्टिम्स, स्किन जो है दैट इज़ द कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास है आई वी ड्रग अब्यूजर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, राइट साइडेड एंडोकार्डाइटिस हुआ, ठीक है, राइट साइड में अगर हम बात करें तो हमारे पास वहाँ पे क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है। अब ट्राइकस्पिड वॉल्व पे अगर होता है ना तो वहाँ पे स्टाफ ओरियस की वजह से होगा एंडोकार्डाइटिस, और स्टाफ ओरियस भी कौन सा होगा, MRSA मेथिसिलिन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंट स्टाफाइलोकोकस ओरियस होगा, ठीक है। अब हम माइट्रल वेल्व की बात करते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइडेड एंडोकार्डाइटिस, तो इसमें वेरिड सी इटियोलॉजी है, ठीक है, इसमें आ जाएगा एंटेरोकोकस, एंटेरोकोकस के बाद स्टाफाइलोकोकस, ठीक है। मगर सूडोमोनास अरजिनोसा, कैंडिडा स्पीशीज, ये भी दिख जाते हैं, और कभी कभी अनयूजुअल ऑर्गेनिजम्स भी दिख जाएंगे आपको लेफ्ट साइड में, जैसे कि बेसिलस, लैक्टोबेसिलस, कॉर्निबैक्टीरियम स्पीशीज, ये भी दिख जाएंगी। फिर ओवरऑल देखा जाए तो मोस्ट कॉमन एजेंट क्या होगा आई वी ड्रग अब्यूजर्स में, दैट वुड बी स्टाफाइलोकोकस ओरियस। अब हम बात करते हैं सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस का मोस्ट कॉमन एजेंट कौन होगा, दैट वुड बी विरिडन स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। अब 5-10 इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के केसेस में क्या होता है ना, ब्लड कल्चर्स आर नेगेटिव, ठीक है, इज 1/3 to 1/2 ऑफ विच आर बिकॉज ऑफ प्रायर एंटीबायोटिक एक्सपोजर। तो इनमें से जो बचे हुए पेशेंट्स हैं दे आर इन्फेक्टेड बाय फेस्टिडियस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जैसे कि हमारे पास आ जाता है न्यूट्रिशनली वेरिएंट स्ट्रेप्टोकोकाई, या फिर आ जाता है हमारे पास हेसेक ऑर्गेनिजम्स, कॉक्सियला बर्नेटी, बार्टोनेला स्पीशीज एंड ब्रुसेला स्पीशीज एंड ट्रोफेरमा विपली, ट्रोफेरिमा विपली। ये एक इंडोलेंट कल्चर नेगेटिव ए फिब्राइल फॉर्म ऑफ एंडोकार्डाइटिस करता है, ट्रोफेरमा विपली। अब सम फैस्टिडियस ऑर्गेनिजम्स अकर इन करेक्टरिस्टिक ज्योग्राफिक सेटिंग्स लाइक सी बर्नेटी जो है, कॉक्सियला बर्नेटी और बार्टोनेला स्पीशीज, ये यूरोप में मिलेंगी। ब्रुसेला स्पीशीज जो हैं वो कहाँ पे मिलेंगी, वो मिडल ईस्ट में मिलेंगी। ठीक है, चलो फिर अब इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो पेनिसिलिन से तो सेंसिटिव होते हैं ज़्यादातर वीडन स्ट्रेप्टोकोक्का की अगर हम बात करें। अच्छा हाँ, ट्रीटमेंट में ना इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की बात करें तो एस ओरियस का एंडोकार्डाइटिस होगा ना अगर, या फिर नेटिव वॉल्व एंडोकार्डाइटिस का होगा अगर MSS से है, ठीक है, मेथिसिलिन सेंसिटिव है, तो वहाँ पे हम क्लोक्सासिलिन या फिर नेपसिलिन दे देंगे 6 हफ्तों के लिए। ठीक है, क्या देंगे हम, क्लोक्सासिलिन या फिर नेपसिलिन 6 हफ्तों के लिए। और MRS है किसी को, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट एस ओरियस है, तो वहाँ पे वैंकोमाइसिन देंगे 6 हफ्तों के लिए। और प्रोस्थेटिक वॉल्व की अगर बात की जाए ना, तो फिर हम क्या करते हैं कि उस केस में ऊपर वाली रजीम जैसे कि MSS या MRS है, ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या दी थी, क्लोक्सासिलिन या फिर नेपसिलिन दी थी या फिर हमने वैंकोमाइसिन दी थी, तो इस सब के साथ हम रिफैम्पिन डाल देते हैं 6 हफ्तों के लिए, या फिर हम जेंटामाइसिन डाल देते हैं 2 हफ्तों के लिए। ठीक है, दूसरा है कि स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई या फिर स्ट्रेप्टोकोकस गैलोलिटिकस की वजह से अगर एंडोकार्डाइटिस हुआ है ना, तो उस केस में हम क्या देंगे, देखिए अगर नेटिव वॉल में हुआ है ना, तो पेनिसिलिन या फिर सेफ्ट्रायक्सोन देंगे हम 4 हफ्तों के लिए। ठीक है, और अगर प्रोस्थेटिक वॉल्व में हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे हम जेंटामाइसिन देंगे, प्लस कर देंगे इसके साथ, ठीक है, पेनिसिलिन या फिर सेफ्ट्रायक्सोन के साथ प्लस कर देंगे 4 हफ्तों के लिए। अब हेसेक एंडोकार्डाइटिस है, ठीक है, तो वहाँ पे हम सेफ्ट्रायक्सोन दे देते हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन दे देते हैं 4 हफ्तों के लिए, 6 हफ्तों मिले जाते हैं अगर प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस हो तो। ठीक है, अब TDM की बात की जाए ना यहाँ पे, तो ऑप्टिमम डोज जो है वो इट इज़ अ की इन अ सक्सेसफुल क्लिनिकल आउटकम। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के केस में ना TDM करना ज़रूरी हो जाता है टू मेंटेन एन ऑप्टिमम एंटीबायोटिक लेवल इन द सीरम, मतलब ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, तो वैंकोमाइसिन की डोसेज तो ये है ना 15 से 20 mg/kg। ठीक है, और जेंटामाइसिन की है 1 mg/kg। चलो ठीक है फिर।